स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज हम आज की 7 तारीख और दिन गुरुवार। वेनेजुएला में सरकार ने जर्मनी के राजदूत को किया निष्कासित। पुलवामा और बालाकोट हमले के बाद विपक्ष बदल रहा है अपनी रणनीति।
मुझे लगता है कि वहाँ बड़े दल सपा और बसपा अपने आप को मानते हैं, तो जो बड़ा भाई अपने आप को मानते हैं पहल उन्हें करनी पड़े। कांग्रेस का मन और दरवाजा सदैव खुला है।
पाकिस्तान में चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का असर या बदल रही है नीति, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। वेनेजुएला की सरकार ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप में जर्मनी के राजदूत डेनियल क्राइनर को निष्कासित कर दिया है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री खोके अरेयाजा ने डेनियल क्राइनर के कराकस हवाई अड्डे पर विपक्ष के नेता ख्वान गुआइदो से मिलने पर आपत्ति जताई है। वहीं वेनेजुएला सरकार के इस कदम पर जर्मनी का कहना है कि इससे इस फैसले से तनाव और बढ़ेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तर कोरिया एक मिसाइल साइट का पुनर्निर्माण कर रहा है तो उन्हें बहुत निराशा होगी, क्योंकि पिछले साल जून में हुई पहली वार्ता के दौरान उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल साइट को नष्ट करने का वादा किया था। डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की हालिया मुलाकात से पहले और बाद में मिसाइल साइट के पुनर्निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें आई थीं। व्हाइट हाउस में संबोधित करते हुए इस मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
We have a very nasty problem there. We have to solve a problem. The relationship is good. I would be very disappointed if
हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हमें उसे सुलझाना होगा। रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत निराशा होगी। यह बहुत शुरुआती रिपोर्ट है, हम देखेंगे आखिरकार समाधान हो जाएगा। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक पूर्व सहयोगी जेराल्ड बट्स ने इंजीनियरिंग कंपनी SNC-Lavalin के खिलाफ अभियोजन न चलाने के लिए पूर्व कानून मंत्री पर दबाव डाले जाने की बात से इनकार किया है। जेराल्ड बट्स ने संसदीय समिति को बताया कि उनकी मंत्री से कंपनी को लेकर बहुत छोटी सी बात हुई थी। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी SNC-Lavalin कोर्ट के बाहर समझौते के लिए लामबंदी कर रही है ताकि वह आगे भी सरकार में कॉन्ट्रैक्ट ले सके। इस मामले के बाद से जस्टिन ट्रूडो सरकार संकट में है, एक कैबिनेट मंत्री और अटॉर्नी जनरल इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि लिबरल पार्टी के एक सदस्य जूली डेराविक्स का कहना है कि अभी यह अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी कि यह घटनाक्रम जस्टिन ट्रूडो की छवि को स्थायी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि कनाडा के मतदाता कह रहे हैं कि पहले हमें पूरी कहानी जानने दो, आखिर फैसला सुनाने से पहले हम हर जानकारी चाहते हैं। कनाडा के लोग उनसे किए गए वादे पूरे करने के आधार पर हमारा मूल्यांकन करेंगे। ये थे लिबरल पार्टी की एक सदस्य जूली डेराविक्स। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने कहा है कि वह अगले 10 साल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्राइमरी के दौरान फॉक्स न्यूज़ को अपने किसी उम्मीदवार की राजनीतिक डिबेट का प्रसारण करने की अनुमति नहीं देगी। कमेटी के अध्यक्ष टॉम परेज ने कहा कि फॉक्स न्यूज़ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अनुचित संबंधों को लेकर आई एक रिपोर्ट के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि फॉक्स न्यूज़ निष्पक्ष नहीं है। वहीं फॉक्स न्यूज़ का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि डेमोक्रेट्स अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। निकारागुआ में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते पैदा हुए 10 महीने पुराने संकट के समाधान और शांति वार्ता के लिए सरकार और विपक्ष पर्यवेक्षकों को चुन रहे हैं। मंगलवार को दोनों के बीच बातचीत के जरिए समाधान को लेकर सहमति जताई गई थी। वार्ता अगले हफ्ते शुरू होगी और महीने के अंत तक समाप्त हो जाएगी। निकारागुआ में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया था। अमरीकी सेनेटर मार्था मैक्सेली का आरोप है कि सेना में काम करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके साथ रेप किया था। मार्था अमरीकी वायुसेना में सेवाएं दे चुकी हैं और वो युद्ध में उड़ान भरने वाली पहली महिला भी रही हैं। मार्था ने कहा है उन्होंने उस वक्त रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि वो व्यवस्था पर अपना भरोसा खो चुकी थी। BBC समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 7 तारीख और दिन है गुरुवार। इस वक्त हो चुके हैं भारत में 6:34:44। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वेनेजुएला से। वेनेजुएला में मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और विपक्ष के नेता खवान गुआइडो में सत्ता संघर्ष के बीच सरकार ने जर्मनी के राजदूत को निष्कासित कर दिया है। सरकार ने उन पर आंतरिक मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। वहीं खवान गुआइडो ने जर्मनी को लोगों का मददगार करार दिया है। वेनेजुएला के मौजूदा हालात पर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
वेनेजुएला में चल रहा राजनीतिक संकट और गहराता जा रहा है। वेनेजुएला की सरकार ने जर्मनी के राजदूत डेनियल क्राइनर को निष्कासित कर दिया है। सरकार ने उन पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री खोके अरेयाजा ने कहा है कि डेनियल क्राइनर ने विपक्षी नेता खुआन गुआइडो के स्वागत के लिए कराकस हवाई अड्डे पर जाकर अतिवादियों से गठबंधन कर लिया है। इस पर जर्मनी का कहना है कि इस फैसले से तनाव और बढ़ेगा। विपक्ष के नेता और स्वघोषित अंतरिम राष्ट्रपति खुआन गुआइडो को जर्मनी मान्यता दे चुका है। जर्मनी के राजदूत के निष्कासन पर गुआइडो ने कहा कि ये फैसला वेनेजुएला के लोगों की मदद करने के कारण लिया गया है। उन्होंने कहा, सत्ता को कब्जाने वाले आज के प्रशासन को किसी को भी प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं है। यह सीधे तौर पर एक खतरा है और एक स्वतंत्र विश्व को इसे इसी तरह देखना चाहिए। ये थे विपक्ष के नेता खुआन गुआइडो। जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने वेनेजुएला के इस फैसले की आलोचना की है और कहा कि जर्मनी खुआन गुआइडो को मान्यता देने के अपने फैसले को नहीं बदलेगा। जर्मन सरकार ने खुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति मानने का फैसला किया है, जिन्हें वेनेजुएला में स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव कराने चाहिए। मादुरो शासन की है प्रतिक्रिया समझ से बाहर है, लेकिन इससे हमारी स्थिति जरा भी नहीं बदलेगी। ये थे जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास के शब्द। खुआन गुआइडो पर यात्रा प्रतिबंध लगे होने के बावजूद भी वह लातिन अमरीकी देशों की यात्रा पर गए थे। उनके 4 मार्च को लौटने के बाद निकोलस मादुरो ने 9 मार्च को एक साम्राज्यवाद विरोधी रैली बुलाई और कहा कि हम नफरत फैलाने वालों को हराएंगे। गुआइडो और मादुरो के बीच लंबे समय से सत्ता संघर्ष चल रहा है। गुआइडो जहां निकोलस मादुरो से नए चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं निकोलस मादुरो इसे एक अमरीकी साजिश बता रहे हैं। रूस और चीन जैसे देश मादुरो के समर्थन में हैं और अमरीका समेत कई पड़ोसी देशों ने खुआन गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी है। वेनेजुएला में अमरीकी आर्थिक प्रतिबंधों के चलते अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। महंगाई अपने चरम पर है और लोगों को खाना व दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। ऐसे में खुआन गुआइडो चाहते हैं कि वेनेजुएला में मानवीय मदद आने दी जाए, लेकिन मादुरो ने मुख्य तौर पर अमरीका द्वारा दी जा रही इस मदद को स्वीकारने से इनकार कर दिया है।
ये थी कमलेश मठेनी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब खबर भारत से। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए बड़े चरमपंथी हमले और उसके बाद पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद क्या विपक्ष की राजनीति में बदलाव हो रहे हैं? क्या विपक्षी पार्टियां मोदी के खिलाफ गठबंधन को लेकर नए तरह से सोचने लगी हैं? सुनिए दिलनवाज पाशा की ये खास रिपोर्ट।
पुलवामा में भारतीय बलों पर हमला और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई ने देश का राजनीतिक माहौल बदल दिया है। विपक्षी दल इसे स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं,
देश का राजनीतिक माहौल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सेना की शहादत के पीछे छुप वोट बटोरने की प्रधानमंत्री की राजनीति से प्रभावित हो रहा है।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कहते हैं,
पुलवामा अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी ने युद्धोन्माद पैदा करके पूरे देश के अंदर इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा, फिर से एक बार बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की बदहाली का मुद्दा, नोटबंदी GST का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, ये राजनीति के केंद्र में आएगा।
तो क्या विपक्ष बेरोजगारी, गरीबी और किसानों के मुद्दे पर एकजुट होगा और गठबंधन के समीकरण बदलने की संभावना है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही बसपा के प्रवक्ता सुधेंद्र भदौरिया कहते हैं,
हमारा ये कहना कि होलिस्टिक बात करें, बहन मायावती जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, अगर सम्मानजनक समझौता करेंगे तो क्यों नहीं सम्मानजनक समझौता होगा। अगर ये चाहें कि नहीं हमको तो दे दीजिए अनुपात से ज्यादा और आप घर बैठिए, ये नहीं होता कभी पॉलिटिक्स में।
इस पर सुरजेवाला कहते हैं कि पहल सपा और बसपा को ही करनी होगी।
मुझे लगता है कि वहाँ बड़े दल सपा और बसपा अपने आप को मानते हैं, तो जो बड़ा भाई अपने आप को मानते हैं पहल उन्हें करनी पड़े। कांग्रेस का मन और दरवाजा सदैव खुला है। प्रियंका गांधी जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों कांग्रेस पार्टी को जड़ों तक मजबूत करने का अथक प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग अलग समूहों के लोग वो कांग्रेस में विश्वास जता रहे हैं और एक नई स्फूर्ति और ताकत कांग्रेस में यकायक वहां नजर आती है। पर फिर भी सम्मानजनक अगर कोई निर्णय होगा तो कांग्रेस कभी अपना दरवाजा बंद नहीं करती।
लेकिन वरिष्ठ समाजवादी नेता राजेंद्र चौधरी संकेत देते हैं कि यूपी में गठबंधन के दरवाजे अब बंद हैं।
नहीं, इस पर तो स्पष्ट कर दिया है पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कि हमने 2 सीट उनके लिए छोड़ दी है और उस आधार पर हम ये मानते हैं कि वो गठबंधन में शामिल है। दूसरा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अब राष्ट्रीय लोकदल भी गठबंधन के साथ हैं, तो ये जो गठबंधन है यही उत्तर प्रदेश में मुख्य धारा है अपोजिशन की।
वहीं अगर बात दिल्ली की हो तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आप अभी भी जोर दे रही है कि दिल्ली और देश में भाजपा के खिलाफ व्यापक गठबंधन की जरूरत है। संजय सिंह कहते हैं,
गठबंधन क्यों करने की जरूरत है इस बात को समझना होगा। आज इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, तीनों के लिए गंभीर खतरा बन गई है। एक ऐसी सरकार को हटाने के लिए जो गाय के नाम पर इंसान का कत्ल होने पर मौन रहती है, जिसके पार्टी के मिनिस्टर कठुआ में 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में रैली करते हैं, तो इसको रोकने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। अब कांग्रेस को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, मुझे आश्चर्य है। और कांग्रेस जिस तरह से यूपी में, बंगाल में, दिल्ली में और बाकी राज्यों में चुनाव लड़कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं करेगी।
वहीं बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन मजबूत है। तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव कहते हैं,
बिहार में विपक्षी गठबंधन एकदम एकजुट है और तकरीबन सारी चीजें जो भी मानक है उसके हिसाब से तय हो चुका है और हम बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में हैं।
लेकिन जहां ये गठबंधन मजबूत नहीं है उसके लिए राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त कहते हैं,
कांग्रेस पर एक जरूर था, ये दायित्व था कि विपक्ष का एक बड़ा महागठबंधन तैयार करे, लेकिन कांग्रेस कई जगहों पे तय नहीं कर पा रही है कि उसे पहले नरेंद्र मोदी या बीजेपी से लड़ना है या जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, तो उनसे इनको निपटना है पहले या पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी से निपटना है। इस कंफ्यूजन के शिकार होकर के अभी तक इनका गठबंधन कहीं परवान नहीं चढ़ पा रहा है।
भारत में राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने के लिए विपक्षी विचारधाराएं भी साथ आती रही हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को चुनौती देने और सत्ता तक पहुंचने के लिए इन एक जैसी विचारधाराओं वाली पार्टियों के गठबंधन के समीकरण बदल जाते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दिलनवाज पाशा, BBC दिल्ली।
और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चरमपंथी समूहों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या पाकिस्तान ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कर रहा है या वाकई में उसकी रणनीति बदल रही है? इस बारे में हमारे सहयोगी वात्सल राय ने दुनिया जहान में इसी की पड़ताल करने की कोशिश की है।
दुनिया जहां।
पाकिस्तान has played a double game for years.
पाकिस्तान बरसों से दोहरा खेल खेलता रहा है। वो हमारे साथ काम करते हैं और अफगानिस्तान में हमारे सैनिकों पर हमला करने वालों को अपने यहाँ पालते भी हैं।
बीते साल की शुरुआत में अमेरिका ने पाकिस्तान पर ये इल्जाम लगाया और उसे दी जा रही मदद रोकने का ऐलान किया। अमेरिका ने जो आरोप लगाया वो नया नहीं था, अब भारत इसे दोहरा रहा है। भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में बीती 14 फरवरी को CRPF के काफिले पर हुए हमले में 40 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। तब से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव है। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान को डॉजियर सौंपा है। पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के भाई समेत 44 लोगों को गिरफ्तार करने और संपत्तियां जब्त करने की जानकारी दी है। हालांकि भारत में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ पाकिस्तान की कार्रवाई को महज दिखावा बता रहे हैं। डॉक्टर अजय साहनी को सुनिए।
जब बहुत इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, जो इनको कम से कम करना होता है, उस प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए, प्रेशर को हटाने के लिए, वो करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि अगर 2 हफ्ते तक के हमारे पास इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेगी तो हम इनको रिहा कर देंगे।
पाकिस्तान ने जमात उद दावा को प्रतिबंधित सूची में डालने की जानकारी भी दी है। इस संगठन के प्रमुख हाफिज सईद हैं, जिन्हें भारत साल 2008 के मुंबई हमले के लिए कटघरे में खड़ा करता है। सईद मुंबई हमले के लिए जिम्मेदार बताए जाने वाले संगठन लश्करे तैयबा के भी संस्थापक हैं। साल 2001 से प्रतिबंधित संगठनों की सूची जारी करने वाली पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की लिस्ट में साल 2002 से ही जैश और लश्कर के नाम है, लेकिन पाबंदी के बाद भी इन समूहों के लगातार सक्रिय होने का दावा किया जाता है। इनके लीडर मसूद अजहर और हाफिज सईद पाकिस्तान में तकरीरें करते और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आते रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकार डॉक्टर अजय साहनी कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के सरकारी तंत्र ने ही इन समूहों को हथियार की तरह तैयार किया है।
इस पूरे क्षेत्र में चाहे जो इंडिया ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं, चाहे अफगानिस्तान की तरफ जो ऑपरेट करती हैं, ये सब पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के हथियार हैं।
ऐसे दावों की तस्दीक कई बार पाकिस्तान की तरफ से ही होती रही है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक टीवी इंटरव्यू में माना था कि भारत और अफगानिस्तान जिन समूहों पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, उन्हें कभी पाकिस्तान ने ही ट्रेनिंग दी थी।
हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। अब आप 90s को ले, कश्मीर की अब आप क्योंकि हाफिज सईद वगैरह की बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी।
पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार और रक्षा मामलों की जानकार मरियाना बाबर कहती हैं कि जो समूह पाकिस्तान की विदेश नीति को बढ़ाने में सहायक थे, उन्हें एक दौर में भरपूर मदद मिली।
शुरू में जो ये ग्रुप्स थे, बिल्कुल हमारे फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए इनको सपोर्ट दिया गया था, असला भी दिया गया था, ट्रेनिंग भी दी गई थी। मगर क्योंकि पाकिस्तान के जो स्टेट एजेंसी थी, उनको ये दिल में था कि चलो ये तो कहीं और कुछ कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो ये अफगान तालिबान थे, वो तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में थे, आर्मी नेटवर्क पाकिस्तान में तो था, ट्रेनिंग उनको जरूरत नहीं थी, वो तो ट्रेन हो गए थे सोवियत यूनियन को मारते मारते।
दहशतगर्द समूहों की बढ़ती संख्या की वजह से दुनिया के कई देश आरोप लगाने लगे कि पाकिस्तान चरमपंथियों की ऐशगाह बन गया है। पाकिस्तान ऐसे आरोपों से इनकार करता है, लेकिन कई देश दावा करते हैं कि NCTA की प्रतिबंधित सूची में शामिल 68 संगठनों में से कई नाम बदलकर सक्रिय हैं। डॉक्टर अजय साहनी पाकिस्तान के चरमपंथी समूहों की जानकारी देते हैं।
सभी ग्रुप्स का एक अलग अलग आप कह सकते हैं प्रोफाइल होता है। अब जैसे बलोच ग्रुप्स हैं, वो तो इंसर्जेंट ग्रुपिंग्स हैं, क्योंकि बलोचिस्तान को इन्होंने जिस तरह से ट्रीटमेंट की है तो वहाँ पे लोगों में बहुत रिजेंटमेंट है। ये एंटी शिया ग्रुपिंग्स ये खुद ही फिर से स्टेट ने पैदा की थी। बाकी ये ग्रुपिंग्स जो हैं ताल्लुक रखती हैं, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो इन्हीं की अपने प्रोटेक्टेड ग्रुपिंग से निकल के इनकी ही खिलाफत करने लग गए। चौथा आप ये कह सकते हैं जो इनके अभी भी कब्जे में लॉयल ग्रुप्स हैं, एंटी इंडिया ग्रुप्स जो हैं, अफगानिस्तान में ग्रुप्स ऑपरेट करती हैं।
रक्षा विशेषज्ञ दावा करते हैं कि जो समूह सरकार के काबू से बाहर हो गए, उनकी तपेश पाकिस्तान ने भी महसूस की। पेशावर के एक स्कूल पर दिसंबर 2014 में हुए हमले के बाद चरमपंथ पर रोक लगाने के लिए 20 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार हुआ। हालांकि डॉक्टर अजय साहनी दावा करते हैं कि कार्रवाई सिर्फ उन्हीं समूहों के खिलाफ हुई जिनसे पाकिस्तान और उसकी सेना को खतरा था।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ऑपरेशंस हुए, कराची में जितनी ग्रुप्स थी उनको सबको खत्म कर दिया गया। इनके मुताबिक दहशतगर्दी वही है जो इनके खिलाफ हो रही है, اور باقی یہ جو بات کرتے ہیں دہشت گردی کے ہم شکار ہیں، تو ایک چیز سمجھیے، یہ اپنی دہشت گردی کے شکار ہیں، انہوں نے ان گروپس کو بنایا تھا۔
چرمپنتھی سموہوں کے خلاف حالیہ کاروائی کی ایک اور وجہ ہے منی لانڈرنگ اور چرمپنتھ کی فنڈنگ پر نظر رکھنے والی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے چرمپنتھ کو وتیہ مدد روکنے میں ناکام رہنے پر بیتے سال پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دیا تھا، اور مریانہ بابر کہتی ہیں کہ اب پاکستان کے سامنے بلیک لسٹ میں آنے کا خطرہ ہے۔
سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایف اے ٹی ایف جو ہے، جو پاکستان کو ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اس نے پاکستان پہ بڑا پریشر ڈالا ہے کہ آپ یہ دہشت گردوں کو ختم کریں یا ان کے ایسٹ فریز کریں، جو ایمبارگو لگائیں ان کے آرمز پہ۔ بہت ہی کنڈیشنز ہوتی ہیں ایف اے ٹی ایف کی۔
مریانہ بابر بتاتی ہیں کہ چرمپنتھیوں کی سمپتیاں جبت کرنے کے لیے پاکستان نے قانون میں بھی بدلاؤ کیا ہے، لیکن ڈاکٹر اجے ساہنی پاکستان میں ہو رہی کاروائیوں کو سنشے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان نے انتراشٹریہ آپتیوں کے بعد بھی ممبئی حملے کے ابھیوکت زکی الرحمان لکھوی کو رہا کر دیا تھا۔
امریکہ نے وہ ایڈ ختم کر دی، لیکن اس سے پاکستان کا رویہ نہیں بدلا، بلکہ افغانستان کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک فتح دیکھ رہے ہیں۔ آج ایک سپر پاور بھاگنے کو کھڑا ہوا ہے اس وقت، وہ کہتا ہے کسی بھی طریقے سے ہمیں کوئی ایک پیس ڈیل کروا دو، ہم تو یہاں سے نکل جائیں گے، باقی افغان سنبھالیں جو سنبھال سکتے ہیں۔ تو اگر ایک اتنی بڑی طاقت سے یہ نہیں دبے، تو آپ سوچتے ہیں گرے لسٹ اور بلیک لسٹ اور یو این پروسکرائب لسٹ سے یہ لوگ گھبرانے والے ہیں یا اپنا رویہ اپنی اسٹریٹجی بدلنے والے؟
لیکن پاکستان کے رکشا وشیشج افغان طالبان کو لے کر اس کی نیتی کا بچاو کرتے ہیں۔
یہ جو افغان طالبان ہیں، یہ پروسکرائب تھے یو این ایس سی کی لسٹ کے اوپر۔ آج کہاں ہیں؟ آج وہ بیٹھے ہیں ماسکو میں، دوحا میں امریکہ سے بات چیت کر رہے ہیں، بلکہ بھارت سے بھی ایک ان آفیشل ڈیلیگیشن ماسکو گئی تھی۔ یہ بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں کس طرح جو ایک بندہ پہلے دہشت گرد تھا، پھر وہ اب آپ کے ساتھ ایک ہی میز سے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ دوسری بات، پاکستان کی یہ بھی اسٹریٹجی تھی کہ ہم اپنا لنک، پولیٹیکل لنک زیادہ تر، وہ ہم نہیں توڑیں گے افغان طالبان کے ساتھ، یہ تو ایک ایسے گروپ ہے جو حکومت میں آئے گا، تو ہم کیوں امریکہ کے کہنے پہ اپنے تعلقات ان کے ساتھ بالکل کاٹ دیں۔
حالانکہ مریانہ بابر یہ ضرور کہتی ہیں کہ پاکستان کی سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں موجود چرمپنتھیوں کو دھیرے دھیرے ختم کیا جائے گا۔
ابھی آپ کو کہنا کہ واقعی یہ سنسیئر ہیں، نمبر ون، ان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں، نمبر ٹو، اور پولیٹیکل ول ہے کہ یہ کر لیں گے، ویٹ اینڈ سی، ہم دیکھیں گے کہ آگے یہ واقعی اختتام پہ پہنچتا ہے کہ نہیں۔
لیکن ڈاکٹر اجے ساہنی بنا انتظار ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔
دیکھیے، ایک زمانے پہلے بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ ان کا یہی رویہ رہا ہے کہ ہم ایک ملٹری فورس، چاہے وہ ریگولر فورس ہو چاہے وہ ٹیررسٹ فورس ہو، اس کو ہم اپنا بڑھاتے چلے جائیں گے، چاہے دیش کو باقی کتنا بھی نقصان ہو۔
پاکستان بھٹو کے دور سے 40 سال آگے بڑھ چکا ہے۔ پردھان منتری عمران خان نیا پاکستان بنانے کی بات کرتے ہیں۔ نئے پاکستان کا سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ وہ کون سی راہ چنتا ہے۔
اور اب وقت ہو چلا اخباروں کی سمیکشا کا، اور کملیش تمام اخباروں کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیں کملیش۔
ہاں، ہمارے سامنے انڈین ایکسپریس ہے جس کی پہلی خبر ہے کہ رفال معاملے میں پنروچار یاچکا کی سنوائی کے دوران کیندر کی اور سے اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ رفال ویمان کے سودے سے جڑے کچھ خاص دستاویز رکشا منترالے سے چوری ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گوپنیتا کے قانون کے انوسار اس معاملے میں مقدمہ درج کیا جائے گا اور جانچ ہوگی۔ اور لیکن اخبار نے ایک اور خبر ساتھ میں دی ہے جس میں لکھا ہے کہ جب ہندو اخبار نے ان دستاویزوں سے جڑی رپورٹ چھاپی تھی تو ودیش منتری نے لوک سبھا میں بولتے ہوئے چوری ہونے کی بات نہیں بتائی تھی۔ اور اس خبر کو کئی اور اخباروں نے بھی دیا ہے۔
ظاہر ہے یہ سب سے بڑی خبر کل کی ہے۔
کئی اخباروں کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ہندوستان لکھتا ہے کہ رکشا منترالے سے رافیل کے گوپنیہ دستاویز چوری ہو گئے اور کورٹ میں جو ہوا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے کہ چرم پنتھی سنگٹھن جیش محمد کے پرمکھ مسعود اظہر کے رشتہ داروں کو ابھی جیسے کہ حراست میں لیا گیا تھا، تو اس کے بعد پاکستانی سینا کے پروکتا نے کہا ہے کہ جیش جو ہے پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ उन्होंने CNN से बातचीत के दौरान ये कहा कि अखबार ने जैसे पहले ये बताया है कि एक ऑडियो क्लिप आया है जिसमें मसूद अजहर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो अथॉरिटी है वो खुदा से डरना चाहिए। तो उसके जवाब में जो सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने उनका ये बयान आया है जी। और इसके अलावा हम देखेंगे तो अमर उजाला में जो खबर है, अयोध्या विवाद से जुड़ी खबर है, कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट आगे बताएगा कि इस मामले में मध्यस्थता हो या नहीं। हालांकि कुछ पक्ष हैं जो इससे सहमति नहीं रखते हैं
और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि तमाम लोग जिनको बेहतर समझते हैं वो नामों की एक सूची वो सुप्रीम कोर्ट को देंगे, वो जिनसे चाहते हैं कि वो मध्यस्थता करें।
जी बिल्कुल। और इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि सूचना प्रौद्योगिकी मामले पर बनी संसदीय समिति ने फेसबुक और व्हाट्सएप को कहा है कि वो सोशल मीडिया कंपनियों के जो निर्देश हैं उनको निर्देश दिया गया है कि 10 दिनों में डाटा सुरक्षा का खाका पेश करें। और समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज को बांटने और हिंसा भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया कमलेश आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त हो चला है खेल समाचार का।
खेल की खबरों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी क्रिकेट से। पहले मैच में मिली हार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ आज दूसरे T20 क्रिकेट मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की कोशिश करेगी। देखा जाए तो भारत को पहले मैच में 41 रनों से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 160 रनों का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में भारतीय महिला टीम 6 विकेट के नुकसान पर 119 रन ही बना पाई थी। न्यूजीलैंड में वनडे सीरीज जीतने के बाद 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से भारत को T20 में लगातार 4 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है और ऐसे में वो दूसरे मैच को जीतकर इस क्रम को तोड़ना चाहेगी। भारत को पहले मैच में हरलीन, कप्तान स्मृति मंधाना, जेमिमा और मिताली राज से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन शीर्ष क्रम के चारों बल्लेबाजों ने टीम को निराश किया और अब सीरीज में बने रहने के लिए इन बल्लेबाजों को रन बनाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। आइए जानते हैं क्या कहना है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान स्मृति मंधाना का।
पहला T20 मैच काफी मुश्किल था। कप्तान के तौर पर पहले मैच में एक्साइटमेंट रहती है। मैं मानती हूं कि मैं पहले गेम में नर्वस थी, पर अब दूसरे T20 में ऐसा नहीं होगा। कप्तान और एक बल्लेबाज के तौर पर अब मैं टीम को अच्छी शुरुआत दूंगी।
और आज दूसरा T20 मैच गुवाहाटी में खेला जाएगा। और अब जाने से पहले बात फुटबॉल की। भारतीय फुटबॉल टीम को टर्किश वुमेन्स कप के अपने आखिरी मैच में हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को भारतीय महिला टीम कजाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेल रही थी जिसमें कजाकिस्तान ने जीत दर्ज की। दोनों टीमों के बीच हुआ मैच रोमांच से भरपूर था और दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पेनल्टी शूटआउट तक गए इस मैच में कजाकिस्तान ने भारत को 4-3 से शिकस्त दी। इस हार के बाद भारत को टूर्नामेंट का अंत 6 स्थान के साथ करना पड़ा। खेल की दुनिया से आज इतना ही।
और अब चलते चलते सुन लेते हैं एक बार प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। वेनेजुएला की सरकार ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के आरोप में जर्मनी के राजदूत डेनियल क्राइनर को निष्कासित कर दिया है। वहीं जर्मनी का कहना है कि इस फैसले से तनाव और बढ़ेगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तर कोरिया एक मिसाइल साइट का पुनर्निर्माण कर रहा है तो उन्हें बहुत निराशा होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक पूर्व सहयोगी जेराल्ड बर्ट्स ने कहा है कि एक इंजीनियरिंग कंपनी SNC-Lavalin के खिलाफ अभियोजन न चलाने के लिए पूर्व कानून मंत्री पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। अमरीकी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने कहा है कि वह अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए फॉक्स न्यूज को अपने किसी उम्मीदवार की राजनीतिक डिबेट का प्रसारण करने की अनुमति नहीं देगी। निकारागुआ में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते पैदा हुए 10 महीने पुराने संकट के समाधान और शांति वार्ता के लिए सरकार और विपक्ष पर्यवेक्षकों का चुनाव कर रहे हैं। अमरीकी सीनेटर मार्था मैक्सेली का आरोप है कि सेना में काम करते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनके साथ रेप किया था। मार्था अमरीकी वायुसेना में सेवाएं दे चुकी हैं और युद्ध में उड़ान भरने वाली पहली महिला भी रही हैं। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।